जैसे ही आस्था हॉस्पिटल के गेट से बाहर निकली, उसने देखा कि एक बड़ी काली मर्सिडीज उसके ठीक सामने खड़ी थी। देव आगे बढ़कर पीछे वाली सीट का दरवाज़ा आस्था के लिए खोल दिया। आस्था ने एक नज़र अस्पताल की ओर देखा और हिम्मत जमाते हुए गाड़ी में बैठ गई। लेकिन जैसे ही वो गाड़ी में बैठी, उसकी नज़र बगल में लैपटॉप पर काम करते हुए अरमान पर गई। आस्था बहुत घबरा गई। उसने सोचा था कि शायद अरमान उसके साथ जाना पसंद नहीं करेगा और दूसरी गाड़ी में जाएगा, आस्था को अकेले जाना होगा। लेकिन अरमान को अपनी बगल वाली सीट पर देखकर आस्था हैरान रह गई। लेकिन अब वो बैठ चुकी थी। वो मन ही मन प्रार्थना करने लगी, हे कृष्ण भगवान जी, बस इस बार संभाल लेना, इस बार बंदूक वाले मॉन्स्टर से बचा लेना। मैं इस बार आपसे पक्का वादा करती हूँ कि मैं इस बार आपको पूरे 101 नारियल चढ़ाऊंगी, बस आप इस मॉन्स्टर से बचा लेना। ये सोचते हुए आस्था मन ही मन प्रार्थना करती रही। उसके बाद उसने एक बार भी अरमान की ओर नहीं देखा। उसका ध्यान सिर्फ खिड़की के बाहर दौड़ते भागते शहर पर था। उस वक्त शहर की खूबसूरती में आस्था पूरी तरह खो गई, क्योंकि जब अरमान और आस्था अस्पताल से निकले थे, शाम के 6 बज चुके थे। शाम की चमक दमक, बड़ी बड़ी बिल्डिंगों की खूबसूरती देखते हुए वो मुस्कुरा रही थी। उसके चेहरे पर बड़े बड़े डिम्पल पड़ रहे थे। वो खुशी से उस नज़ारे का आनंद ले रही थी। ये देखकर अरमान को उससे चिढ़ होने लगी। आस्था का इस तरह मुस्कुराना उसे पसंद नहीं आया। उसने गुस्से में तेज़ी से अपना लैपटॉप बंद कर दिया। लेकिन आस्था का ध्यान अरमान की ओर बिल्कुल नहीं गया, क्योंकि वो बाहर की खूबसूरती में खोई हुई थी। अब अरमान का सब्र जवाब दे गया, क्योंकि वो आस्था को इस तरह मुस्कुराते हुए बिल्कुल नहीं देख सकता था। उसने अचानक आस्था के बाजू को कसकर पकड़ लिया और उसे अपनी ओर खींच लिया। आस्था के बाजू में तेज़ी से दर्द हुआ और उसके मुंह से हल्की सी चीख निकल गई। वहीं आगे फ्रंट सीट पर बैठे देव को जैसे ही आस्था की चीख सुनाई दी, उसने तुरंत पीछे मुड़कर देखा। लेकिन जैसे ही उसने देखा कि आस्था यानी उसकी मैडम अरमान के सीने से लगी हुई है, तो उसकी आंखें हैरानी से फैल गईं। उसने तुरंत अपना मुंह आगे कर ड्राइविंग पर ध्यान दिया। बार बार देव अपनी आंखें मसल रहा था। उसे ऐसा लग रहा था मानो उसने कोई आठवां अजूबा देख लिया हो, क्योंकि इस तरह से अरमान सिंघानिया के आसपास किसी लड़की को देख पाना किसी आठवें अजूबे से कम नहीं था। जल्दी ही देव ने अरमान की परमिशन लिए बिना गाड़ी का पार्टीशन ऑन कर दिया। आस्था, जो उस वक्त शहर की खूबसूरती में पूरी तरह खोई हुई थी, अरमान के इस बर्ताव से बहुत डर गई। उसके हाथ पैर बुरी तरह कांपने लगे। अरमान ने भी उसके कांपते शरीर को महसूस किया। तभी आस्था एक झटके से अरमान से अलग होकर बैठ गई और डर और कन्फ्यूजन से उसकी ओर देखने लगी। अरमान गुस्से भरी लाल आंखों से उसे घूरते हुए बोला, मैंने तुम्हें कहा था ना कि तुम्हें मेरे सामने मुस्कुराने का भी हक नहीं है, तो तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस तरह से मेरे सामने मुस्कुराने की? तुम्हें सिर्फ मेरे दादाजी, मेरे दोस्त और भाई के सामने मुस्कुराने की एक्टिंग करनी है, मेरे सामने नहीं, समझी तुम? आगे से मैं तुम्हें खुश ना देखूं, क्योंकि मैं तुम्हारी इतनी सी भी खुशी बर्दाश्त नहीं कर सकता हूं। फिर से उसने उसे घूरना शुरू कर दिया। अरमान की बातें सुनकर आस्था बहुत हैरान और परेशान हो गई थी। उसे समझ में ही नहीं आया कि आखिरकार अरमान कहना क्या चाह रहा था। वो तो बस शहर की खूबसूरती देखकर थोड़ा सा मुस्कुरा रही थी, और अगर थोड़ी बहुत वो खुश भी हो रही थी, तो क्या उसकी खुशी अरमान की आंखों में चुभ रही थी? ये बात आस्था के दिल में एक दर्द सा दे गई। और अभी थोड़ी देर पहले जो आस्था मुस्कुरा रही थी, अचानक उसकी आंखों से एक दो आंसू निकलकर उसके गालों पर आ गए। अरमान ने जैसे ही आस्था की आंखों में आंसू देखे, उसने सुकून की सांस ली और एक बार फिर अपना लैपटॉप ऑन करके काम करने लगा। वहीं आस्था अपनी आंखें बंद किए हुए अपनी किस्मत को रोने लगी और आने वाली जिंदगी के बारे में सोचने लगी। कार जल्दी ही सिंघानिया मेंशन पहुंच गई। देव ने बड़े ही विनम्रता से अरमान से कहा, सर हम घर पहुंच गए हैं। अरमान ने कहा, घर पहुंच गए तो अब मुंह क्या देख रहा है, फटाफट दरवाजे खोलो, उसने देव को आदेश दिया। देव ने जल्दी ही अरमान के लिए कार का दरवाजा खोल दिया। अरमान बिना आस्था की ओर देखे फटाफट लंबे लंबे कदम लेते हुए सिंघानिया मेंशन के अंदर चला गया। देव ने जैसे ही आस्था के लिए दरवाजा खोला, आस्था ने जल्दी से अपने आंसुओं को साफ करके उसकी ओर देखकर उसे धन्यवाद दिया और कहा, देव भैया, क्या आप मुझे बता सकते हैं बाकी सब कब तक अस्पताल से वापस आएंगे? जैसे ही देव ने आस्था के मुंह से देव भैया सुना, वो एक पल के लिए खो गया। उसे आस्था से बहुत अपनापन सा महसूस होने लगा। उसे ऐसा लगने लगा मानो आस्था के रूप में उसकी छोटी बहन उसके सामने खड़ी है। देव ने जल्दी से कहा, जी मैडम, 3 घंटे तो उन्होंने आपसे बोला ही था ना, उस वक्त मैं भी वहां मौजूद था। और कितना टाइम लगेगा, बस अभी थोड़ी देर में मैं आपको फोन पर पता करके बता देता हूँ। लेकिन आप फिक्र मत कीजिए, मैं यहीं पर हूँ, और अगर आपको कुछ भी चाहिए होगा तो आप मुझे बता सकती हैं। देव समझ चुका था कि आस्था इस वक्त बाकी सबके लिए क्यों पूछ रही थी, क्योंकि उसे अरमान के साथ अकेले रहने में डर लग रहा था। देव मन ही मन सोचने लगा,
आप तो फिर भी एक लड़की हैं, लेकिन यहाँ तो बड़े बड़े वीआईपी भी अरमान सिंघानिया के साथ अकेले रहने या मीटिंग करने में कितना डरते हैं इसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता है। आस्था ने थोड़ी हिम्मत करते हुए अपना पहला कदम रखा और सिंघानिया मेंशन की ओर बढ़ने लगी। जैसे ही वो वहां गई, उसने देखा कि पूरा हॉल खाली था और सभी नौकर शाम के खाने की तैयारी में लगे हुए थे। एक नौकर जल्दी से आस्था के पास आया और कहने लगा, मैडम जी, साहब आपको ऊपर कमरे में बुला रहे हैं। ये सुनकर आस्था का शरीर फिर से कांपने लगा। उसने सोचा था कि घर आने के बाद सीधा अपने कमरे में चली जाएगी, जो कमरा दादाजी ने उसे रहने के लिए दिया था। लेकिन जैसे ही नौकर ने कहा कि बॉस उसे ऊपर बुला रहे हैं, आस्था का गला सूखने लगा। उसने जल्दी से आगे बढ़कर डाइनिंग टेबल पर रखा पानी का ग्लास उठा लिया और एक साथ पूरा ग्लास पानी पी लिया और खुद को अरमान के कमरे में जाने के लिए तैयार करने लगी, क्योंकि ये वही कमरा था जहां आस्था पर गोली चली थी। वो उस कमरे को कैसे भूल सकती थी? उसे एक अनजान सा डर सता रहा था और वो उस कमरे में नहीं जाना चाहती थी, लेकिन उसके पास वहां जाने के अलावा कोई और रास्ता नहीं था, क्योंकि अरमान के बारे में जानकर वो इतना समझ चुकी थी कि अगर उसने सीधे तरीके से अरमान की बातें नहीं मानी तो अरमान एक पल नहीं लगाएगा उसके पूरे परिवार को मिटाने में। वैसे भी परिवार के नाम पर उसका अगर कोई था तो मामा मामी और उसकी नानी, लेकिन उसे अपने मामा मामी की कुछ खास चिंता नहीं थी। लेकिन उसे अपनी नानी की बहुत चिंता थी। अपनी जान से भी ज्यादा वो अपनी नानी को प्यार करती थी। वो अपनी वजह से अपनी नानी पर किसी तरह की कोई आँच नहीं आने देना चाहती थी। इसलिए आस्था ने गहरी लंबी सांस ली और जल्दी ही मन में अपने कान्हाजी से प्रार्थना करती हुई अरमान चिंघानिया के कमरे की ओर बढ़ने लगी। वो मन ही मन बोल रही थी, कृष्ण भगवान जी, आपने गाड़ी में तो मेरी बात नहीं मानी, गाड़ी में तो आपने उस मॉन्स्टर से नहीं बचाया, लेकिन इस बार आप मुझे बचा लीजिए। मैं वादा करती हूँ, इस बार मैं एक नारियल और बढ़ा देती हूँ। पक्का मैं इस बार आपको 102 नारियल चढ़ाऊंगी, पर प्लीज इस बार आप मुझे बचा लीजिएगा, प्लीज प्लीज प्लीज। सोचते हुए आस्था जल्दी ही अरमान सिंघानिया के कमरे के बाहर पहुंच गई और जैसे ही उसने कमरे का दरवाजा खटखटाया, अचानक से वो दरवाजा अपने आप ही खुल गया। अब तो आस्था और ज्यादा हैरान हो गई। वो सोचने लगी, मैंने दरवाजा खोला भी नहीं और ये अपने आप ही खुल गया। तभी उसे एक आवाज सुनाई दी। अब तो आस्था की जान हलक तक आ गई थी।